सुख विनाशे दुख प्रगटाए, दुख विनाशे सुख रूप दिखाए। सुख जो हमको प्राप्त होता है, जिसका हम आनंद लेते हैं, कहते हैं कि वो नाश हो जाता है और दुख प्रकट हो जाता है। यहां पर ये वाणी आपके दैनिक जीवन के बारे में, जो रोजाना का घटनाक्रम हमारे जीवन में घटता है, उसके बारे में इशारा करती है। एक साधारण से उदाहरण से इस बात को समझने की कोशिश करें कि सुख विनाशे दुख प्रगटाए। एक माँ अपने बालक के पास बैठी हुई है, कुछ पढ़ रही है, कुछ देख रही है या आराम कर रही है। बालक उसका 3-4 साल का उसके पास ही खेल रहा है, तो अचानक वो सुखी था, अचानक ही उसको भूख लगाई। और भूख लगाई उसको तो खेल तो उसने छोड़ दिया, माँ को परेशान करने लगा, माँ मुझे भूख लग रही। अब माँ मजबूर है क्योंकि उसे बालक है कि बालक को यदि खाना नहीं दिया या खाने को कुछ नहीं दिया तो ये रोएगा, कलेश करेगा। माँ उसको लेकर जाती है किचन में या जहां भी उसके मतलब का वो खाद्य सामग्री रखी हुई है, उसको देने की कोशिश करती है। लेकिन बालक सुखी था, लेकिन भूख लगी तो उसके अंदर बेचैनी शुरू हो गई, वो सुख दुख में बदल गया। केवल बात इतनी ही नहीं है, हमको पता है कि भूख तो शरीर की आवश्यकता है, ये पूरी होनी ही चाहिए। लेकिन बालक केवल भूख के लिए नहीं रोता, अब वो माँ से जिद करता है कि मुझको ये चीज खाने को दो, जो विशेष रुचि है इस पदार्थ में है, उस चीज की वो माँ से डिमांड करता है। तो एक तो भूख का दुख, एक इच्छा का दुख, तो दो बालक के साथ जुड़े हुए हैं। और माता भी तो अपना सुख है, वो तो चैन से विश्राम कर रही थी, घर के काम करके थक चुकी थी। लेकिन बालक के दुख ने उसको भी परेशान कर दिया, उसका जो सुख था, जो भोग रही थी, वो उसका छिन गया। तो हमारे जो सारे दिन की क्रिया होती है वो इसी प्रकार किसी ना किसी आइटम के द्वारा हमको बेचैन करती रहती है और हम उस कर्म जाल में फंसे रहते हैं। वही कह रहे हैं सुख विनाशे दुख प्रगटाए, दुख विनाशे सुख रूप दिखाए। दुख का विनाश होता है तो वही हमको सुख रूप दिखाई पड़ने लगता है। अब ये कैसे होता है इसको भी यदि उदाहरण से समझें तो मैं आज स्वस्थ हूं, कल तो मुझको बुखार आ गया, टेस्ट कराया तो पता लगा टाइफाइड है। अब जब टाइफाइड है तो इलाज में ठीक होने में 10-15 दिन तो लग ही जाएंगे। मैं बीमार पड़ गया, मैं मनचाहा खाना नहीं खा सकता, मनचाही जगह में जा नहीं सकता। और हम सब जानते हैं कि जितना भी बुखार का जो पीरियड होता है, जितने दिन का भी होता है, वो दुख रूप जीवन। और कोई 10 दिन बुखार में रहा, 10 दिन दुखी रहा, तो अंदर से क्या चाहता होगा, एक ही इच्छा होगी किसी तरह से मेरा ये दुख दूर हो जाए, बुखार दूर हो जाए। तो कहते हैं कि दुख विनाशे सुख रूप दिखाए, जिस दुख का तेरा विनाश हुआ या दुख को तेरा दूर हुआ, कहते हैं कि वही तुझको सुख रूप दिखाई पड़ता, उसे मिला कुछ नहीं, अब उसका बुखार जब ठीक हो गया तो बड़ा खुश होता है अंदर से, मेरा दुख दूर हो। कौन सी खुशी है, कौन सा सुख है, स्वास्थ्य तो तेरा ही था, वो तुझसे छिन गया तो दुखी हो गया, अब दोबारा जब वो दुख दूर, रोग का दुख दूर हुआ तब तो सुखी महसूस कर रहा है। इस प्रकार एक छाया की तरह से सुख के बंधन में फंसे रहते हैं, इसी को वाणी कह रही है कि दुख विनाश से सुख रूप दिखाए। आगे कह रही है देह का सुख देह संग विनाश से, देह का दुख देह संग से भास, देह का सुख देह संग विनाश। मैं जितने भी सुख भोगता मुझको पता है वो मेरे इंद्रिय सुख होते हैं या स्वयं शारीरिक सुख। तो सुख की अनुभूति मुझे काटती देह के देह का सुख देह संग विनाश। अब देह के कारण मुझे सुख मिल रहा है लेकिन देह रोगी भी होती है, देह विनाश भी हो जाती है, देह की मृत्यु भी होती है। तो देह के जितने भी सुख हैं विचार करो जरा, देह के संगीत का विनाश हो गया नहीं होगा। सारी जिंदगी मैंने इसके इकट्ठे किए, बड़े बड़े लक्ष्य बनाए अपने लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, लेकिन मेरी देह के संग ही उनका भी विनाश हो गया। और कह रहे हैं देह का दुख देह संग से भास, और देह का जो दुख है जो मैं भोगता हूं देह के द्वारा, जैसे बीमार हो जाता हूं तो कितना दुखी होता हूं, लेकिन देह का दुख देह संग से भास। तो देह का दुख तुझे कब तक भास रहा है, कब तक अनुभव हो रहा है? जब तक इस देह का संग तुझको मिला हो। कहने का तात्पर्य यह है कि देह का सुख देह संग विनाशे, देह का दुख देह संग से भासे। तो इस प्रकार अगली बात क्या होती है, वो कहते हैं कि देह त्याग जब जीव चलोई दुख सुख वासना में लीन संग। देह का त्याग हुआ तो मेरी लीला खत्म नहीं। देह त्याग जब जीव चलोई, जब मेरी देह मौजूद है जिसके द्वारा सुख और दुख भोग रहा हूं, मैं अपने को भूला हूं लेकिन जब विचार करता हूं सत विचार करता हूं तब ये बात मुझको समझ आ जाती है कि हाँ एक दिन देह मेरी छूट जाएगी, मुझको त्याग करनी पड़ेगी। देह त्याग जब जीव चढ़ी, जब ये जीव इस देह का त्याग करके संसार से विदा होता है, कहते हैं दुख सुख वासना में लीन सुनो, फिर जीव की क्या हालत होती है? जितने भी दुख सुख मैंने अपने आप को शरीर समझकर भोगे थे, उन सारे दुख और सुख के संस्कार मेरे अंदर ही इकट्ठे हो जाते हैं। किस रूप में? जिसको हम मन कहते हैं। तो सुख दुख के संस्कार इस जीव के का जो अपना ही मन है उसके अंदर ये सुरक्षित बच जाते हैं। फिर क्या होता है कि ये उन सुखों और दुखों की वासना अर्थात इच्छा लेकर ये इस संसार से में लीन हो जाता है, अर्थात देह त्याग कर देता है। फिर नई देह इसको मिल जाती है। मैं वही रहा, वर्तमान देह के द्वारा मैंने सुख भी भोगे दुख भी भोगे, और नेट रिजल्ट है क्या सुख दुख का कि मैंने संसार में बेचैनी ज्यादा भोगी चैन कम होगा। ये नेट एनालिसिस है सारे सत्पुरुषों का इस जीव के बारे में, इस मनुष्य जन्म के बारे में। तो जीते हुए भी जब तक शरीर रहा मैं परेशान रहा बेचैन रहा, क्योंकि पूरा जीवन अनिश्चित है, यहां कुछ भी निश्चित नहीं है। कब क्या आइटम बिगड़ जाएगा मुझको पता ही नहीं। तो जब ये देह मेरा त्याग करती है, क्योंकि तो देह मेरे वश में नहीं है, वो प्रारब्ध के वश में, जब ये देह मेरा त्याग करती है तो जो भी सुख और दुख के संस्कार मैंने शरीर के द्वारा भोगे, वो सारे के सारे संस्कार मेरे मन के अंदर वासना के रूप में, इच्छा के रूप में वो इकट्ठे रहते हैं। और नई देह जब मुझको मिलती है तो ये सारे संस्कार मेरे मन में सुरक्षित होते हैं। जिस प्रकार जब आप स्वप्न देखते हो तो कुछ देर के लिए आपकी नई देह तैयार होती है, कुछ देर के लिए आप उसमें सुख और दुख भोगते हो, लेकिन जब नींद खुलती है जागते हो तब आपको जो जागृत हालत में देह है ये मिल जाती है, और उन सुख दुखों की जो आपने स्वप्न में भोगे थे उसकी याद बनी होती है, केवल याद होती है। लेकिन जागृत होने के बाद आप निश्चित रूप से ये जानते हो, बुद्धि जानती है कि वो केवल स्वप्न था, वो वास्तविकता नहीं थी। इसलिए वो संस्कार गहरे नहीं होते, इतने हल्के होते हैं कि आपकी बुद्धि का निश्चय जहां आया अब तो मैं जागृत हूं, वो तो कल्पना थी, तो सारे संस्कार आपको मिट जाते हैं। लेकिन जो वर्तमान जन्म में पूरा जीवन भर मैंने इकट्ठे किए संस्कार, वो मिटते नहीं, वो वासना के रूप में मेरे मन में सुरक्षित रहते हैं। और नया जन्म जब मुझको मिलता है, जीव को नया शरीर मिलता है, तो सारी वासना उसके मन के अंदर वो उजागर हो जाती है, उसी के अनुसार उसकी इच्छाएं उठती हैं, उसी के अनुसार उसका स्वभाव होता है, उसी के अनुसार वो कर्म करने को, व्यवहार करने को मजबूर होता है। तो मेरा विज्ञान वास्तव में कितना गहरा है, इस पर मैं जब तक गहराई से विचार नहीं करता, तब तक मैं ठीक ठीक किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाता। अब आगे वो कहते क्या है, वो कहते हैं प्रभु की आज्ञा में जीवन ढाल, निष्काम कर्म मार्ग को भाल। करने को क्या था मेरे, वो कहते हैं कि प्रभु की आज्ञा में जीवन ढाल, वर्तमान जन्म लेकर तूने प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीवन चलाना। प्रभु की आज्ञा क्या है? एक तो प्रभु की आज्ञा ये है जिसको हम मिटा नहीं सकते, शरीर पूरी तरह से प्रारब्ध के अधीन, कब पैदा होगा, कैसे पैदा होगा, कब उसकी डेथ होगी और क्या क्या सुख दुख जीवन में भोगने को मिलेंगे, कौन से काम बनेंगे, कौन से बिगड़ेंगे, सारा का सारा एक प्रारब्ध चक्र है जिसको हम हॉरोस्कोप भी कहते हैं, जिसको हम जन्म पत्री भी कहते हैं। वहां से हम कोई अच्छा ज्योतिष मिल गया तो पता लगा सकते हैं कि भविष्य में क्या होगा, बदल नहीं सकते लेकिन पता लगा सकते। तो कहते हैं कि प्रभु की आज्ञा में जीवन ढाल, निष्काम कर्म मार्ग को भाल। तो मनुष्य जन्म जिसको मिला था, इस कर्म के दोष से या कर्म वासना से बचने के लिए, कर्म वासना को खत्म करने के लिए, क्योंकि कर्म वासना ही तुझको सुख दुख देती है और सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये निरंतर आता जाता रहता है। एक स्थिति में ना तेरा मन टिकेगा ना तेरा संसार टिकेगा, इसीलिए तो निरंतर संसार में रहकर बेचैन ही रहता है। यदि आप ठीक ठीक एनालिसिस अपना करें, बड़े साधारण रूप में आपकी बुद्धि इस निर्णय तक पहुंच जाए। तो मनुष्य जन्म दिया क्यों है? इस सुख सुख दुख की वासना से मुक्त होने के लिए मनुष्य जन्म दिया। तो सुख दुख की वासना से मुक्त कैसे होंगे? वो कहते हैं निष्काम कर्म मार्ग को भाल। तुम्हें मनुष्य जन्म लेकर निष्काम कर्म करना सीखना, अर्थात कामना के बंधन से मैं कैसे मुक्त हूं, वासना के बंधन से मैं कैसे मुक्त हूं, उस मार्ग को मैंने सीखना था। इसीलिए प्रभु ने मुझको बुद्धि दी, और खाली बुद्धि नहीं दी, इस बुद्धि के साथ वो खुद अंदर निवास कर रहे हैं। लेकिन मैंने अपना जो ध्यान है वो कहां लगा रखा है? मन की वासना पर लगा रखा है, मन के संस्कारों पर लगा रखा है। और मन मैंने कहां लगा रखा है? बाहर शरीर पर लगा रखा है। यही मेरा स्वरूप है, यही मेरा जीवन है, मुझको इतना ही पता है। तो मनुष्य जन्म अपनी इस बेचैनी को समझने के लिए मिला था। इतने जन्म का लोग तो साथ लेकर आया है, अब तुझको ईश्वर ने एक मौका दिया मानव जन्म देकर कि तू इस कमी को समझ सकता है। तू कामना रखकर हर कर्म को करता है, कामना रखकर जो है अपने संतान को पालता है, कामना रखकर तो संसार में व्यवहार करता है। तो जो तेरी बीमारी है सैकड़ों जन्मों की, वो इस जन्म में तू गहरी करके जाता है, उसका इलाज करने के नहीं सोचता। इसलिए गुरु जब संसार में अवतार लेकर आता है, अवतार क्यों करे? क्योंकि ईश्वर निराकार सत्ता है, वो मेरी देह में मौजूद है, लेकिन मुझको उसका मार्गदर्शिता पता ही नहीं करता। इसीलिए वही अंतर्यामी सत्ता गुरु रूप में बाहर अवतार लेकर आती है। और अवतार लेकर वो मेरा मार्गदर्शन है। तो गुरु का सारा जीवन देख लीजिए निष्काम होने के लिए, जब वो गुरु बनता है संसार में हम लोगों का, तब 100% वो निष्काम होता है। इसलिए सारी उसकी वाणी, सारे उसके शास्त्र, सारा उसका मार्गदर्शन, सारा उसका शारीरिक जीवन एक ही चीज सिद्ध करता है, जितना अधिक से अधिक तो इस जन्म में निष्काम हो जाएगा, उतने अधिक से अधिक अंतर शांति का भोग करे। और ये शांति कहाँ है? शांति शारीरिक कर्म में नहीं, शांति का सागर अंतर्यामी ईश्वर। तो सारा ये ज्ञान अध्यात्म विद्या मुझको अंदर का रास्ता दिखाती है, मेरे मन को अंदर ले जाने की कोशिश करती है, बुद्धि का निर्णय बदलने की कोशिश करती है। कि बुद्धि का निर्णय ऐसा ज्ञान पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते, संगत करते करते एक दिन मेरी बुद्धि का निश्चय बन जाता है। यदि जीवन में कभी शांति मिली तो अंदर ही है, बाहर तो कभी मिल ही नहीं सकती। बाहर शांति की खोज करना ये असंभव कार्य है। तो इसीलिए जब ये मैं गुरु की बात सीखता हूं, मानता हूं, तब कहते हैं निर्वास स्वरूप ठाकर भर पाया, सुख दुख परे तब भेद लगा। तो गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार मैं जीवन जीता हूं। क्या जीवन है, उसके दर्शन क्या है? सादा जीवन जिसका, इसका मन प्रसन्न, मंगल साधन जो करे पाए अमोल धन। तो अमूल्य धन कौन सा जो मिलेगा? यही प्रभु का आनंद है, वो अमूल्य धन जो इस देह के अंदर ही तुझको प्राप्त हो। तो दुनिया की कोई ताकत उससे छीन नहीं सकती, वो तेरा अपना सुख है, अपना आनंद है, अपनी शांति है, अपने जीवन की सफलता है, जो मौत भी तुझको तुझसे छीन नहीं सकती। तो इसीलिए वो निर्वास स्वरूप ठाकर अंतर्यामी ईश्वर निर्वास स्वरूप है। तो उससे जब मिलना चाहता हूं तो मुझको निर्वास होना पड़ेगा। जिस वासना ने सैकड़ों जन्म मुझको दुख दिया, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, मुझको मिलता ही रहता है। जवानी में कितना सुख की हम कल्पना करते हैं, बुढ़ापे में बदल जाते हैं, बदल जाते हैं, बुढ़ापा मौत में बदलता है, नहीं बदलता है। तो सारे जिंदगी का खेल और तेरे आंखों के सामने होता है। इस गति को तो सबके जीवन में, शारीरिक जीवन में देखता है, फिर भी क्योंकि तेरा कोई गुरु नहीं है इसलिए तेरे ज्ञान की आंख खुलती नहीं, बस नकल करके ही तू जीता रहता है और धोखा खा जाता है। तो यही वाणी कह रही है कि सादा जीवन जिसका, इसका मन पर संभव, मंगत साधन जो करे पाए अमोलक धन। सारा जीवन का मतलब क्या है? जितनी तेरे जीवन में वासना कम से कम है और बुद्धि में यह होश है, वासना मुझको बेचैनी देती है, चाहता हूं मैं चैन, मिलती है मुझको बेचैनी, क्योंकि मैं 100% गुलाम हूं इस प्रकृति का। इसको प्रारब्ध कहते हैं, यही प्रकृति की गुलामी है। मैं आजाद नहीं हूं, जो चाहे मैं नहीं कर सकता। महाराज कह रहे हैं प्रेमी तू करता है नहीं, लेकिन अपने आप को देह समझने के कारण, क्योंकि देह से कर्म होते हैं इसलिए अपने आप को तू करता समझ लेता। इस अज्ञानता के कारण मैं कितना दुख, कितना क्लेश भोगता हूं। तो वर्तमान जन्म, मनुष्य जन्म मिला मुझको ये, और इस जन्म में मुझको गुरु शिक्षा मिली, गुरु का मार्गदर्शन मिला, फिर भी मैं मिस कर जाऊं इसको, फिर भी मैं संसार की नकल करके आगे बन करके चलता रहूं। तो याद रखिए, नकलची आदमी कभी बुद्धिमान नहीं बना, वो विकसित नहीं होता नकलची आदमी। जो अपनी मेहनत करते हैं, होश में जीवन व्यतीत करते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है। तो होश का जीवन यह है कि मैं अपने आप को समझने लगता हूं कि मैं कौन हूं। मैं वही हूं जो इस देह की मौत होती है जो बच जाता है। मेरी संपत्ति क्या है? जो मन के अंदर मैं शौक इकट्ठे करता हूं, इच्छाएं इकट्ठी करता हूं, स्वभाव इकट्ठा करता हूं, वो सब बच जाता है। और नया शरीर मुझको प्रभु देते हैं, लेकिन वही वासना मेरे अंदर जिंदा रहती है, वही स्वभाव मेरे अंदर जिंदा रहता है, वही संस्कार मेरे अंदर जिंदा रहते हैं, फिर अगले जन्म में भी मुझको परेशान करते हैं। इसीलिए मनुष्य जन्म मिला था इस स्वभाव रूपी मैल को धोने के लिए। इसलिए ईश्वर क्या है? ईश्वर है परमानंद, परमेश्वर पाई कृष्णा त्याग चित शांत समय, जो अंतर्यामी ईश्वर को परमानंद है। परमानंद क्यों है? क्योंकि संसार में वो आनंद कहीं है ही नहीं। वो ऐसा आनंद है जो कभी नष्ट हो ही नहीं सकता, जिसको एक बार मिल जाए। तो परमानंद परमेश्वर पाई, कृष्णा त्याग चित शांत समय, मेरे चित्त में मेरी बुद्धि में जो कृष्णा की संसार की ये इसका त्याग हो जाता है और मेरा चित्त शांति में समा जाता है। अब बताइए मनुष्य जन्म कितना कीमती है और कितने कीमती कार्य को करने के लिए मिला है। मैं छोटे छोटे संसार के बहाने बनाकर अज्ञानता के कारण संसार को महत्व सारा देता हूं, इसको महत्व नहीं देता, कहता हूं मुझे फुर्सत का। याद रखिए सादा जीवन जिसका जिसका मन पर सो, मंगल साधन जो करे पाए अमोलक धन, अमूल्य निधि जो कभी कम हो ही नहीं सकती, वो तुझको अंदर ही मिल जाती है प्रभु के रूप में। इसलिए याद रखें प्रभु आधार भयो जीव जब छिन छिन नाम कमाए मंगत दुर्मत जागते सत पदलीन समाए प्रभु आधार भयो जीव जब छिन छिन नाम कमाए।